Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And yes, if you're calling from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा. नमस्कार शिशिर, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
आप सभी को नमस्कार.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग.
Thank you, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices decline. Sensex plunges over 1,000 points. Nifty settles below 24,900 level. Global crude oil prices jump over 8% amid fear of supply disruption. And India and Canada exchange agreements in critical minerals, renewable energy and cultural cooperation to boost bilateral ties.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट में रहे. सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक की तीव्र गिरावट पर हुआ बंद. निफ्टी 24,900 से नीचे आया. आपूर्ति में बाधाओं से जुड़े डरों के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 8% से अधिक के उछाल में रहीं. और भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग पर समझौतों का आदान प्रदान किया.
And friends, before we move on any further, here's a disclaimer announcement which comes every day. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. That's it. Yes.
इससे पहले कि हम शेयर बाजार की ओर चलें, हमारे साथ आज के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं. नोएडा से साहिल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें.
हाय, गुड इवनिंग.
क्या गुड इवनिंग?
मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे हमने देखा है कि मिडल ईस्ट में कितना क्रियोस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से आज भी हमने सेंसेक्स में लगभग 1100 पॉइंट्स की गिरावट महसूस करी है. तो यहाँ से हम कितना और सेंसेक्स को गिरने की अंदेशा देखते हैं, और उसके साथ क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी राइट टाइम आ गया इन्वेस्ट करने का, या फर्दर और स्लिप होने की अभी उम्मीद है यहाँ से?
पहले प्रश्न के जवाब में तो बहुत मुश्किल है कि कहां तक गिर सकता है. देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो अभी संघर्ष चल रहा है वो और कितना गहराता है. और अभी की जो स्थिति दिख रही है, अगर आज की मैं बात करूं, दोपहर के बाद की परिस्थितियां जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं रही हैं. और मुझे लगता है कि शायद अभी हमें और भी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. आज स्थिति थोड़ी बेहतर रही, उम्मीद से जिस कहते हैं ना सॉरी आशंका जो थी कि 2500-3000 पॉइंट की गिरावट होगी, लेकिन उसके मुकाबले 1100 पॉइंट की गिरावट, 1000 से 1100 पॉइंट की थी, और बाजार जो है बीच में लगभग 2000 पॉइंट की रिकवरी भी उसमें देखने को मिली थी। तो एक तरीके से कहा जाए तो बाजार ने कुछ हद तक तो उसको डिस्काउंट किया है, लेकिन परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि उसमें गिरने की आशंका काफी ज्यादा बनी हुई है। दूसरा आपका प्रश्न है कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर गिरावट एक मौका देता है नए निवेश का। किस्तों में निवेश करिए, आज का जो है आपके लिए एक मौका बना है, थोड़ा निवेश करिए और गिराए, फिर और थोड़ा निवेश करिए, यह आपके लिए एक बेहतर होगा। एक मुश्त एक साथ ये मत सोचिए कि सारा का सारा संसाधन आज ही लगा देना है।
शेयर बाजार से जुड़ी विस्तृत जानकारी से ही जुड़ी है हमारी आज की पहली खबर। पश्चिम एशिया में तनाव गहराने के बीच प्रमुख बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज लगभग 1.3% की भारी गिरावट दर्ज हुई। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 1048 अंकों की कुल गिरावट से 80239 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 313 अंक टूटकर 24866 दर्ज हुआ। सप्ताहांत के दौरान भू राजनीतिक तनावों के बाद आज सुबह बाजार कमजोरी के साथ खुले और पूरे सत्र में बाजारों पर दबाव बना रहा। युद्ध से जुड़ी चिंताओं के बीच निवेशक जोखिम उठाने से बचते दिखे। हालांकि कारोबार के आखिरी कुछ घंटों में सूचकांकों में मजबूत सुधार देखने को मिला।
As tensions in West Asia escalated, benchmark equity indices, the Sensex and the Nifty today recorded a sharp decline of about 1.3%. By the close, the Sensex plunged 1,048 points to close at 80,239, while Nifty cracked 313 points to settle at 24,866. Earlier, the markets opened lower following geopolitical tensions over the weekend and remained under pressure throughout the session as investors turned risk-averse amid war concerns. However, the indices staged a strong recovery during the last few hours of the trade.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों पर नजर डालें तो उसमें से 27 के शेयर आज गिरावट पर बंद हुए। सबसे अधिक नुकसान दर्ज करने वाले शेयरों में इंडिगो 6.2% लुढ़क गया, लार्सन एंड टूब्रो के शेयर में 5% की गिरावट आई और अदानी पोर्ट्स का शेयर 3.3% से अधिक के नुकसान पर बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयर थे 2.1% उछाल के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सन फार्मा जिसमें 0.8% से अधिक आई और 0.4% बढ़त के साथ आईटीसी।
Among the sectoral indices at the BSE, 23 out of 24 sectors edged lower, with metal being the only gainer, rising over 0.1%. Among the top losers, services tanked 3.8%, consumer durables dropped 2.3%, and auto lost over 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,561 companies declined, 821 advanced, and 146 remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 50 पैसे कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 91.47 रुपए दर्ज हुई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 98.24 पर चल रहा था।
एंड नाउ वी आर ज्वाइंड बाय गुरुराज वी देसाई फ्रॉम मैसूर। यस गुरुराज जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Thank you, madam. Thank you, all team, Market Mantra. Yeah. I've been listening to Market Mantra quite for some time. Mm-hmm. I've worked to a private industry. We don't have pension. For that reason, I have invested from last about 10, 15 years, around 18, 19 lakhs rupees in equity. Now, with this volatility or decrease in the market, current market scenario, my investment has now gone down from almost 12% profit to 4%. Should I continue or should I? What is my fate? I don't know.
That's a very, very difficult question to answer. That I understand the pain when your profit, or rather I would use the word notional profit, has come down from 12% to 4%. The thing is, still you are in a profit. So my advice would be that make some sell, not just very heavy sell, and try to recover part of your capital, and then also try to reinvest, because any dip is giving you an opportunity to reinvest. That will bring down the cost of the share which you are holding. That is what in English we call it as the averaging the prices. So have a two-pronged strategy. One, sell a part of that and then put the money back into the market, that the reinvestment, that will help you to bring down the cost of your investment. And my another advice would be that please do not disclose how much money you have invested. I mean, God knows who all are listening to your thing. So better to not to disclose that money. So that's a strategy you should follow that.
और अगले कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से शोभित. शोभित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछिए.
थैंक यू मार्केट मंत्रा टीम. गुड इवनिंग शिशिर जी.
गुड इवनिंग.
आई थिंक यू विल बी इनंडेटेड विद द क्वेश्चंस ऑन द डेवलपमेंट इन द वेस्ट एशिया रीजन.
सीम्स लाइक टू मी.
एंड इट्स द फ्लेवर ऑफ द डे प्रोबब्ली इफ आई से दैट. एंड in every opportunity, once in every adversity, we see this opportunity and it goes for the market too. So looking at the way the indices have fallen in last couple of days and likely to go down further, which sectors do you think will be the best to put your money and the likely time of recovery in those sectors? Thank you.
You have clearly explained the situation, and I think that's the answer to questions which I am facing every day. Today the questions are much in high number on this issue. So you have rightly mentioned that every dip is giving you an opportunity to go and make some fresh investment. At this moment, two sectors are very important. One is, of course, the defense stocks are really in news, and I think that is also giving an opportunity. And the second one is the metal sectors. Metal sectors are also doing some good progress, so there you can have a chance of earning some profit. The third one, I would say that oil exploration company, those companies who are mainly in the production of crude oil, those are the companies where you can put some money into that. I'm not using the word oil sector, because oil sector has two part, upstream and downstream. So I'm talking about not the companies which are marketing, there the losses are high, but those who are in the production side, they are in a better situation. So these are the three sectors, two sectors and one half of that, the third sector. So these are giving you the opportunity. Now the question is, till what? That's the something which is a very difficult, because the situations are so evolving. At this moment, it is very difficult to say when this war is going to end. So expectation is that if it is over by 6 to 7 days, that will give you some opportunity in next 3 to 6 months. But at this moment, please do not go for the end, that when you are going to sell and earn the profit, that you will have to wait for some more days.
So Shishir, जैसा आपने अभी कहा कि जब भी गिरावट आती है इस तरह की, तो opportunity आती है. ये हमारे पास प्रश्न भी आए हैं जो हमारे listeners हैं उनके. और आज हमने बाजार में देखा है कि आखिरी घंटों में, शुरू में बहुत गिरावट आई, आखिरी घंटों में कुछ सुधार हुआ. सो आपको लगता है कि ऑलरेडी वैल्यू बाइंग जो है वो शुरू हो गई है, उसकी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैश इन कर रहे हैं?
बिल्कुल. देखिए, आपने जिन शेयरों का नाम लिया, चूंकि ये कार्यक्रम की नीति है कि हम शेयरों के ऊपर चर्चा नहीं करते, लेकिन आपने अपने विश्लेषण में जिन शेयरों का नाम लिया, उनमें से कुछ एक शेयर जो है वो काफी ऊंची कीमत पर थे. आज उनमें 5-5% की 6-6% गिरावट आई है. अब वो 5% गिरावट आपको एक मौका दे रही है कि आप उसमें जाकर के खरीदारी करें. और मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि एक बार में पूरा खरीदिए मत. अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपए हैं, तो आज 10 रुपए की खरीदारी करिए, फिर कल 10 रुपए की खरीदारी करिए. यदि आपने पैसा लगा रखा है, ऊंची कीमत पर आपके हैं, और अभी भी अगर आप मुनाफे में हैं, तो उसमें एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट आप उसको सेल कर दीजिए और वो पैसा री इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपकी जो खरीद की लागत है वो कम हो सके। तो ये अगर रणनीति बनाती हैं आप तो मुझे लगता है कि शेयर बाजार आपको फायदा दे सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अभी प्रश्न जो पूछा गया था कि कब तक लगे रहना है। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार में केवल पैसे का निवेश नहीं होता है, धैर्य का भी निवेश होता है। और धैर्य के बारे में कोई सीमा तय करनी कि आप 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, वो बहुत मुश्किल है। अब ये परिस्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। बेहतर रणनीति यह है जहां भी आपको एक खरीद का मौका बने यानी कि बाजार गिरे थोड़ा सा खरीदारी कर लीजिए, अपने संसाधन को बचा कर करके और गिरावट आए और खरीदी।
शिशिर, इंडियन मार्केट्स आर कंसिडर्ड टू बी लार्जली कंजम्पशन बेस्ड। ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एंड वी हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइक देयर बीन वॉर्स एंड वी हैड द पैंडेमिक, बट व्हाई डू यू सी हाउ कम दैट वी सी द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ड्रॉपिंग 2.3% डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी?
बिकॉज द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट विच आर यूज्ड इन दोज कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। They are imported. So cost of imported goods are likely to go up because of these disruptions. And the logistic cost is also expected to go up. So because of this thing, there will be some impact on the profitability of those company. So you will sell, but at the end of day, somebody has to buy it. And if the prices are slightly on a higher side, then he will defer his decision. He or she will defer his decision to buy, say, after, say, 1 year or 6 months or 3 months. That is a fear which is in the in those particular sector which you just mentioned. One is, of course, a consumer durable. And there are other sectors.
Automobile,
everywhere. I mean, we are producing those goods, but certain kind of components are being imported, so the cost will go up, and that is a fear which brought some kind of selling pressure on those companies.
Shishir, kal hamara bazaar holi ke upalaksh mein band hai, bhartiya bazaar, lekin humne aaj dekha ki chautarfa pure vishw ke bazaron mein bikwali hui, dabav bana hua tha. In fact, percentage terms mein dekhe to kai baki bazaar humse bhi zyada gire hain. US futures mein girava थी, सिर्फ चीन का बाजार था जिसने आउटलायर था. सो आपको क्या लगता है कि परसों जब बाजार खुलेगा तो इसी तरह की वॉलेटिलिटी हम देखेंगे जैसे हमने आज देखा, इंट्राडे इतनी जो वॉलेटिलिटी आज देखी?
देखिए बड़ा दिलचस्प, आप कह लीजिए, संजोग भी कह लीजिए कि परसों जब उत्तर भारत होली में रंग में डूबा होगा और शेयर बाजार पे उसकी निगाहें होंगी तो शायद बहुत अच्छे रंग वहां आपको देखने को ना मिले. और ये सब कुछ निर्भर करता है कि कल यानी कि 3 तारीख को क्या कुछ होता है. और आज की रात भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई तरीके से प्रयास चल रहे हैं कि ये संघर्ष जल्दी खत्म हो, ये जो तनाव की स्थिति है जिसको कम किया जाए. आपने देखा होगा कि सऊदी अरब की बात करें या फिर हम और भी दूसरे देशों की बात करें, वहां पर कई जगहों पर प्रोडक्शन रोका गया है, रिफाइनरी वर्क रोका गया है. ये सारी चीजें ना हो, ये लंबा ना खींचे, उसको रोकने के प्रयास अभी चल रहे हैं. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 2 दिन में शायद कोई समाधान निकल जाए, लेकिन कहना गलत ना होगा कि 4 तारीख का रंग कुछ फीका हो सकता है.
आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अधिकांश एशियाई बाजार आज भारी गिरावट पर बंद हुए. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.1% से अधिक लुढ़क गया. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 2.1% की तीव्र गिरावट में रहा. जापान के निकेई 225 सूचकांक में 1.3% से अधिक की गिरावट आई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% के नुकसान पर बंद हुआ. हालांकि गिरावट के इस ट्रेंड के विपरीत चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक लगभग 0.5% की बढ़त पर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी रुख गिरावट का था. जर्मनी का डैक्स 1.7% के नुकसान पर था. फ्रांस के कैक में 1.6% की गिरावट चल रही थी और लंदन का फुटसी लगभग 1% की मंदी पर था. सो क्या लगता है आपको, आगे किस तरह से सेंटिमेंट संभल सकता है बाजार का? क्या कोई और फैक्टर्स हावी हो सकते हैं या ये जो ऑयल की सप्लाई पर और जो दबाव पड़ रहे हैं इस युद्ध के कारण वही हावी रहेंगे बाजारों पर?
देखिए एक बात अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान में जो कोई भी नेतृत्व आता है वो किस तरीके से बातचीत के लिए तैयार होता है. अभी तक उन्होंने साफ कर दिया कि वो बातचीत के लिए अभी तैयार नहीं है, तो वो अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपके लिए समझौते का रास्ता बन नहीं रहा है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि अगर सभी जितने भी खाड़ी के देश हैं जो प्रभावित हो रहे हैं वो मिल करके कोई प्रयास करें, कोई पहल करें, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ खाड़ी के देश है, वो मिल करके प्रयास करें तो शायद कोई समाधान निकल जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आज की रात और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं और क्योंकि उससे जो वाणिज्यिक नुकसान है वो काफी ज्यादा होने लगा है और उसको रोकने के लिए खाड़ी के देशों का प्रयास बहुत अहम है, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि खाड़ी में कुछ और नहीं, तेल ही तेल है और तेल अगर कहीं उसकी धार उल्टी पड़ गई तो खाड़ी के देशों का कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हैं,
और ग्लोबली ऑल्सो नुकसान होगा क्योंकि रिसोर्स नहीं होगा।
इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, जितेंद्र जयपुर से, आपका स्वागत है, सवाल पूछे।
हाँ, आप सुनु सुध मैम बोल रही है ना?
जी
हाँ। अच्छा सर, ये बोल रहे थे कि जैसे अभी आज के डेट में जैसे हमारे सभी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा शेयर है, तो जो हम अभी ले सकते हैं ना लंबे समय के लिए, जैसे पावर है, आईटी है, रेलवे है, और अभी भी मार्केट ये होगा तो ऐड करें ना?
अगर आप डिफेंस में ऐड करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आईटी सेक्टर से अभी थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि वहां पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और वो इनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई और कारण है, तो आईटी से अभी दूर रहें। रेलवे एक अच्छा विकल्प है आपके पास, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक आपके लिए डिफेंस है और दूसरा अगर मेटल के शेयरों में, मेटल कंपनियों के शेयरों में आप लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर है।
All right, we are now joined by Shankar, who's calling us from Bhopal. Yes, Shankar, hello. Hello.
Namaste.
Yeah, namaskar, Shankar ji. Apna sawal puchega, please. Ji.
Sir, is aaj ke parikrekshya mein main puchna chahta hu. Pehli baat namaste Shishir Singh ji ko aur market mantra team ko.
Ji.
Sir, ye aaj kuch share jaise electric engineering field mein nahi gire hain. Kuch bank ek do nahi gire hain. To वो डिफेंस सेक्टर के नहीं थे लेकिन फिर भी नहीं गिरे, थोड़े से गिरे हैं 0.25% या इवन ऊपर चढ़े हैं, तो इन शेयरों को क्या अच्छा माना जाए? क्योंकि इनके ऊपर कोई सेंटिमेंट का फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके ऊपर कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी परिभाषा दे सकते हैं? आपने कभी इस बारे में कभी सुना इस बारे में? थैंक यू।
बिल्कुल सुना है, और एक ही क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि एक दो शेयर जिसको हम लोग कहते हैं ना आउटस्मार्ट कर देते हैं वो, और उसकी एक वजह यह होती है कि उस खास बैंक में या उस खास कंपनी में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो उसको एक सकारात्मक रुख देती है, तो ये कोई हैरान नहीं करता है, जिसे कहते हैं कि आप धारा के विपरीत जाकर के चलते हैं, ये होता है। और ऐसे समय में पूरे सेक्टर्स पे जब प्रश्न चिन्ह लग रहा हो और एक दिन अगर उसमें से एक किसी में अगर बेहतरी देखने को मिले तो ये मान लेना नहीं चाहिए कि वो बेहतर ही रहेगा। मेरा यही हमेशा से सुझाव रहा है कि आप अगर कोई भी सेक्टर्स में आप जाते हैं तो पूरे सेक्टर को पढ़ करके जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
All right, friends, as we know that the Canadian Prime Minister is here in Delhi, while India and Canada today exchanged 3 agreements in different areas, including critical mineral cooperation, promoting the use of renewable energy and cultural cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney today held delegation-level talks at Hyderabad House in New Delhi. During the talks, both leaders reviewed the progress achieved till date across diverse areas of the India-Canada strategic partnership. They also took stock of the ongoing cooperation in key pillars including trade and investment, energy, critical minerals, agriculture, education, research and innovation, and people-to-people ties.
हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 billion तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना ये हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
So how do you see this, Shishir?
In fact, the last line of what Prime Minister is talking about, the comprehensive economic agreement, that is very critical at this moment, because the kind of geopolitical situation we are seeing, and when you have the bilateral, good strong bilateral relationship with number of countries, that is certainly going to help you in a big way. So in the In the recent time, we have seen number of bilateral agreements.
Yes.
So this is another addition into that, and that will certainly help in overall export scenario, and that in turn will also help the manufacturing sector in India.
Right. All right, according to the quick estimates of the Index of Industrial Production, IIP, India's industrial production growth grew at 4.8% year-on-year during January as compared to 7.8% in December last year. Sectorally, the slump was driven by the manufacturing sector, which grew at 4.8% in January as compared to 8.1% in December. Similarly, mining grew by 4.3% compared with 6.8%, and electricity generation growth also eased to 5.1% from 6.3% in the same period. A lot of statistics here. Again, your analysis.
See, industrial production, of course, it is lowest in 3 months. But still 4.8% is not a small number. Uh-huh. It is showing that there is a consistency. Uh-huh. And the expectation is that in the coming month, say in the month of February or in the month of March, we will see some improvement, some further improvement. And that one of the reasons would be manufacturing sector. But still, the problem is that the geopolitical situation, and that is going to impact it. So at this moment, we are hoping for a better days in February and March. But if the situation evolve and more problems are there, then that number will also be affected.
In the economic canvas of the country, do you think that we need to focus a little more on the manufacturing sector? That needs a little bit of push.
Manufacturing is always required to be given maximum priority because it's considered as a job multiplier. Mm-hmm. So if you are focusing more on manufacturing, and that is the policy, because at this moment the share of manufacturing is 15-16%, and if we have to go for Viksit Bharat by 2047, yes. Yeah. Then we have to bring the share of manufacturing sector at least to 22-24%. That is certainly going to help you in a big way.
Uh-huh, uh-huh. Alright, talking about oil now, global crude oil prices surged over 8% today as tensions escalated in West Asia over the weekend. This raised concerns about potential disruptions in the Strait of Hormuz, through which nearly 20% of the global oil supply passes and over 40% of India's crude imports are routed. Brent crude was trading over 8.6% higher at $79.15 per barrel, and WTI crude was also trading more than 8.4% up at $72.68 per barrel when reports last came in.
Shishir, yes, one of the biggest fallouts is war ka India ke liye.
कच्चा तेल है और आज जो लगभग 8-9% की गिरावट हुई है उसमें दो तथ्य हमें ध्यान रखने की जरूरत है. एक, ओपेक प्लस ने कहा है कि वो उत्पादन थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन जैसा कि आज दोपहर के बाद जो दो घटनाक्रम हुए हैं, रिफाइनरी में काम रोका गया है, सीएनजी का प्रोडक्शन रोका गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है. और यही वजह है कि अब सरकार के अंदर इसी बात पे मंथन ज्यादा हो रहा होगा कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि रातों रात अब जो है वो वेनेजुएला या दूसरे देशों से तेल ला करके प्रोसेस करना आसान नहीं है. तो एक चिंता का विषय बिल्कुल.
All right. Well, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 4.3% up at 1,69,470 rupees per 10 grams, while silver was trading 5% higher at 2,96,290 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाला सोना 4.1% की वृद्धि से 1,68,752 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और मार्च अनुबंध वाली चांदी लगभग 4.4% की तेजी दर्ज करती हुई 2,87,000 रुपए प्रति किलो पर थी. तो ये तो क्लासिक सिचुएशन है सेफ हेवन डिमांड क्रिएट होने की.
सोना और चांदी जब कभी भी अनिश्चितता आएगी आसमान छुएंगे.
और आपको लगता है कि अभी और बढ़ेंगे?
बिल्कुल.
अच्छा, तो फिर इन्वेस्टमेंट का टाइम है उसमें भी?
सोने में निवेश करने का अभी समय अगर नहीं है फिजिकल गोल्ड में, तो आप गोल्ड ETF में लगाइए, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट लीजिए, फायदे में रहिए.
समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर, आप आए और आपने हमें विस्तृत जानकारी दी.
धन्यवाद.
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices decline, Sensex plunges over 1,000 points, Nifty settles below 24,900 level. Global crude oil prices jump over 8% amid fear of supply disruption. And India and Canada exchange agreements in critical mineral, renewable energy and cultural cooperation to boost bilateral ties. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor Sonu Sood, and our expert of the day, Shishir Sinhaji, signing off. Namaskar. Market Mantra.